सर्वशक्तिमान की संतान हो,
तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कौन कहता है महज इंसान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
प्रॉब्लम्स को पाए, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जब भी शक्तियों की बात आती है, हमारे मन में नाम उठते हैं माँ दुर्गा, माँ काली, और हमें जब भी शक्ति की ज़रूरत पड़े हम इनकी आराधना करते हैं और शक्ति मांगते हैं। आज के इस भाग दौड़ के युग में, कॉम्पिटिशन के युग में, शक्तियों का लेवल निरंतर घटता जा रहा है, तो इसी विषय में चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति के साथ। ओम शांति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभी हमारे अंदर शक्ति ही नहीं बची, बहुत ही डल सा महसूस करते हैं हम, ऐसा निरंतर होता रहता है, और आजकल इस कंपटीशन के वातावरण में ये बार बार होता है, तो ऐसा क्यों?
तो इला, जब आपको शक्ति की कमी महसूस होती है, शरीर का कोई पार्ट कमजोर है, ऐसा लगता है, पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो जब शरीर में कोई कमजोरी या शक्ति की कमी लगती है, तब आप क्या करती हैं?
जी, मैं टॉनिक लेती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, व्यायाम करती हूँ, और अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करती हूँ।
और जब आपके मन में शक्ति की कमी हो, मना कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, माना मन में शक्ति की कमी होना, तो इस वक्त आप क्या करते हैं?
शरीर को ही तंदुरुस्त रखना पता है, मन को कैसे तंदुरुस्त रखे ये नहीं पता।
तो हमने देखा, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को शक्तिशाली पावरफुल बनाने के लिए हम एरोबिक्स करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि शरीर के बारे में अवेयरनेस लेवल हमारा हाई है। हम सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, और हेल्थ कॉन्शियसनेस के कारण हम अपने शरीर का ध्यान रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। पर जब आत्मा कमजोर हो जाती है, माना मनोबल कमजोर हो जाता है, लो फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे यह हो नहीं सकेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आत्मा में शक्ति की कमी का कारण क्या है? जब हम में अहंकार की भावना होती है, ईगो, तब हम अपने आप को शरीर के अहंकार में जकड़ा हुआ पाते हैं और इसके कारण मैं ऐसा हूं, मेरी यह पोजीशन है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना मन में पैदा होने लगती है। और तब क्या होता है, सामने वाला थोड़ा सा इन्फीरियर दिखाई देने लगता है कि मैं तो यह हूं, सामने वाला मेरे जैसा पावरफुल नहीं है। तो इस प्रकार जब शरीर से रिलेटेड अहंकार की भावना आती है, देह अभिमान की भावना आती है, तो हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, सामने वाले के दृष्टिकोण को ढंग से देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को सामने वाले के शूज में रख नहीं पाते। और इसलिए क्या होता है, दूरियां, तकरार और मन में धीरे धीरे गुस्सा पैदा होता है, चिड़चिड़ाहट के संकेत नजर आते हैं। और गुस्से से क्या होता है, जहां गुस्सा है वह शांति होगी नहीं, शांति भी छिन जाती है, अशांति हो जाती है। और जहां शांति नहीं वहां आनंद मिल सकता है नहीं, आनंद भी गायब हो जाता है, प्रेम भी गायब हो जाता है, सुख भी नहीं रहता। तो जब हमारे मन में अवगुण प्रवेश करने लगते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स प्रवेश करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों में कमी आने लगती है और हमें शक्तिहीनता इस प्रकार की फीलिंग आने लगती है, कमजोरी की फीलिंग आने लगती है। जरूरत है जैसे ही अवेयरनेस आए कि मुझ में शक्तिहीनता नजर आ रही है, मुझ में कमजोरी नजर आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चार्ज करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ।
तो अगर मन में कमजोरी आ जाए, ये शक्तिहीनता की भावना आ जाए, तो हमें मन को चार्ज करना है पॉजिटिव थॉट्स देकर।
बिल्कुल। और एला, जब हम बात करते हैं इन अवगुणों की, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है रावण का। रावण क्या था, महाज्ञानी था, नॉलेजेबल था, पर उसमें सबसे बड़ा अवगुण कौन सा था, अहंकार, है ना। और अहंकार के साथ साथ क्रोध, जहां अहंकार है वहां गुस्सा जल्दी आएगा, क्रोध उसके साथ है, जहां क्रोध है वहां अशांति रहेगी, और जहां अशांति है वहां प्रेम
नहीं रहेगा,
नहीं रहेगा, प्रेम नहीं है तो जीवन में सुख
नहीं रह सकता,
सुख भी नहीं रह सकता, तो इस प्रकार से आनंद भी नहीं रह सकता, और जहां आनंद नहीं है, ये सातों गुण नहीं है, वहां शक्ति भी नहीं रह सकती।
इसीलिए शायद दशहरे को हम अवगुण रूपी रावण को जलाते हैं, ताकि हमारे मन के अवगुण जल जाएं और गुण हमारे मन में घर कर लें।
बहुत अच्छी बात कही ईला आपने। दशहरे को हम रावण की मूर्ति को जलाते हैं, रावण जिसके 10 सिर दिखाते हैं। और जब हम सिर की बात करते हैं तो ये अहंकार का सूचक होते हैं, अवगुणों का सूचक होते हैं। तो 5 अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 अवगुण स्त्री के, 5 अवगुण पुरुष के, इनको मिलाकर रावण को दिखाते हैं, उसमें डबल अवगुण थे। पर ईला, दशहरे को हम रावण को जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, पर हम क्या देखते हैं, जो मूर्ति हम रावण की बनाते हैं वह पिछले साल से और बड़ी होती है, हर साल रावण की मूर्ति बड़ी होती जाती है, उसको हर साल जलाते रहते हैं, पर क्या हमारे अंदर का रावण जलता है, क्या वह कभी खत्म होता है?
ऐसा लगता तो नहीं है। हम कोशिश जरूर करते हैं कि हमारे अंदर का अवगुण अहंकार दशहरे को चला जाए, इनको जितना भी कोशिश करके हटाएं, ये मन में कहीं ना कहीं तो रह जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय हम करें कि ये हरदम से हमारे मन से चले जाए?
तो जैसे कि ईला आपने कहा, बाहर के रावण को जलाते हैं, लेकिन मन के अंदर का रावण वह अभी भी वही है, और अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में और बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसे मारने के लिए क्या किया जाए। अंदर के रावण को मारना है, अंदर के अवगुणों को खत्म करना है, तो हमें शक्तियों का उपयोग करना होगा। और जब शक्तियों की बात आती है तो हमारे मन में कौन सी इमेज आती है? माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णो देवी। तो जितनी भी देवियां हैं उन्हें अष्ट भुजाधारी दिखाया गया है, 8 भुजाएं उनकी दिखाई गई हैं। और भुजा माना हाथ, यह किसका सिंबल है? भुजा शक्ति का सिंबल है, पावर का सिंबल है। तो इसका मतलब उन देवियों में इतनी शक्ति थी, 8 हाथों जितनी उनके आत्मा में शक्ति थी, क्योंकि आत्मा की शक्ति को पर्सोनिफाई किया है 8 भुजाएं देकर।
सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को सुख शांति का अमर वरदान देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली यही माँ जगत अम्बा है।
जय अम्बे माँ जगत अम्बे माँ, जय अम्बे माँ जगत अम्बे माँ।
सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव से प्राप्त ईश्वरीय शक्ति द्वारा विकारों रूपी महिषासुर का नाश करने वाली यही शिव शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है।
दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी, जग जननी ये आदि भवानी, आदि भवानी।
सर्व आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित कर सुख समृद्धि का अखुट भंडार देने वाली सर्व की आराध्य देवी यही माँ लक्ष्मी है।
इस जीवन के संचालन में साथ रहो लक्ष्मी माता, मनोकामना पूरी करना, करना नहीं कमी माता।
ज्ञान वीणा के चंकार द्वारा मानव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यही श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी माँ सरस्वती है।
नमस्ते शारदे देवी, कश्मीर पूर्णवासिनी, त्वाम हम
मनुष्य आत्माओं पर लगे हुए आसुरी संस्कारों के कलंक को मिटाने वाली यही शिव शक्ति ही माँ काली भी है।
भूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्न मस्तका, पवनपूर्णा वाग देवी त्वं देवी कमलालया, सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनु, त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्याप्त व्याप्त स्वरूपिणी, निराकरापि सकाराकस्त्वं वेदितुमर्हति, उपासकानं कार्यर्थं श्रेयसे जगतामपि।
तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें भी अपनी 8 शक्तियों को विकसित करना है। तो हम जब अष्ट भुजाधारी देवियों को देखते हैं तो उनकी हर भुजा, उनके हर हाथ में कोई ना कोई शस्त्र को हम देखते हैं। ये शस्त्र किसका प्रतीक है? क्या देवियों ने हिंसक लड़ाई लड़ी? क्या देवियों ने किसी असुर का हिंसक रूप से वध किया? ये देवियां तो जहां शक्ति का प्रतीक है वहां प्रेम का भी प्रतीक है। जब हिंसा हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही एक बिग नो है, हम कहते हैं ना लड़ाई करना अच्छी बात नहीं, लड़ाई तो अवगुण है, तो देवी देवताएं लड़ाई कैसे कर सकती हैं, हिंसक लड़ाई? इस प्रकार देवियों के जो 8 हाथ दिखाए जाते हैं, हर हाथ या भुजा में एक अलग अलंकार दिखाया जाता है, एक विशेष अस्त्र दिखाया जाता है, और वह किसका सूचक है कि यह 8 प्रकार की शक्तियां थी देवियों के पास, जिससे उन्होंने अपने अंदर के असुर को नहीं मारा, सिर्फ अपनी ही कमी कमजोरियों को खत्म नहीं किया, पर पूरे संसार में आसुरी प्रवृत्तियों का उन्होंने इन अष्ट शक्तियों के आधार पर नाश किया।
सिस्टर तृप्ति, ये बचपन से ही मेरे मन में प्रश्न उठता आया कि देवियों के 8 हाथियों दिखाते हैं, उनकी 8 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? तो अब समझ में आया कि ये 8 भुजा शक्ति का प्रतीक है, और हर भुजा में जो अलग तरह का अस्त्र है तो ये अलग अलग शक्ति का प्रतीक है।
बिल्कुल सही, देवियों के भुजा दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, उनको सिर नहीं दिखाते। सिर अहंकार का प्रतीक है, अवगुणों का प्रतीक है, और भुजा शक्तियों का प्रतीक है। तो देवियों के पास ऐसी 8 कौन सी शक्तियां थी जिससे उन्होंने सारे संसार के आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म किया। तो अब हम बात करेंगे इन अष्ट शक्तियों की, जो सिर्फ देवियों के पास ही नहीं थी, पर हम सभी आत्माओं में ये 8 शक्तियां होती हैं, पर अभी कहीं ना कहीं सुषुप्त रूप में हुई हैं, सोई हुई हैं। जरूरत है इन शक्तियों को जानने की, परखने की और उन्हें डेवलप करने की। तो पहली शक्ति है सहन शक्ति या सहनशीलता। आम के पेड़ को जब हम देखते हैं तो आम का पेड़ इला कैसा होता है?
आम का वृक्ष हरा भरा होता है, पीले आमों से भरा होता है या हरे आमों से भरा हुआ होता है, और क्योंकि फलों से भरा हुआ है तो थोड़ा झुका झुका सा रहता है वो।
जिस आम के पेड़ पे इतने सारे फल लगे हुए होते हैं तो उन फलों को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं। और ईला अगर मान लिया जाए आम के पेड़ पर फल नहीं लगे हैं तो क्या होगा?
तो वह वृक्ष झुका हुआ नहीं होगा और कोई पत्थर नहीं मारेगा।
हाँ, न वो झुका हुआ होगा, और क्योंकि उस पे पेड़ पे फल नहीं है तो लोग उसे पत्थर भी नहीं मारेंगे, क्योंकि पत्थर मार के उन्हें कुछ मिलना नहीं है, उनको कोई प्राप्ति होनी नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो क्या होता है, तो हम बिल्कुल सीधे होते हैं। कहते हैं ना ताड़ के पेड़ के समान, जिससे न पंथी को छाया मिलती है, राहगीर को छाया मिलती है, और न ही किसी को फल मिलता है।
इसी पर एक कहावत याद आई, बड़ा हुआ सो का हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे पेड़ जिसका किसी को कोई फायदा नहीं, उसे कोई पत्थर मारता भी नहीं, और इससे हमें यह पता चलता है कि सहन भी किसको करना पड़ता है, जिसमें देने की क्षमता होती है, जो किसी को कुछ दे सकता है, माना जो गुणों से भरपूर होता है उसी को सहन करना भी पड़ता है। तो सहन करना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन करना माना कमजोरी की निशानी नहीं है, सहन करना शक्ति की निशानी है। और हर शक्ति का आधार कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो जो सहन शक्ति है उसका आधार कौन सा गुण हो सकता है? उसका आधार है प्रेम, क्षमा भाव। जिस प्रकार हम माँ को देखते हैं। माँ क्या करती है? अपने बच्चे से प्रेम करती है, अपने बच्चों की बुराइयों को नजरअंदाज करती है। बच्चे माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर क्योंकि माँ बच्चों से प्यार करती है, इसलिए वह अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करती है। तो उसी प्रकार जिसके मन में प्यार है वही क्षमा भी कर सकता है, और जो क्षमा कर सकता है वही सहनशील भी हो सकता है, और जो सहनशील होता है उसमें यह सहनशीलता सहन शक्ति बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा कोई ना कोई गुण शक्ति का प्रतीक होता है। ईसा मसीह की बात करें, क्राइस्ट की बात करें, तो जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, जब उसको सूली से लटकाया जा रहा था, तो ईला उसने कौन से शब्द कहे?
क्राइस्ट ने शायद जो लोग उनको क्रूसीफाई कर रहे थे उनके लिए भगवान से क्षमा मांगी थी।
बिल्कुल, क्राइस्ट ने कहा, ओ गॉड फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो क्राइस्ट ने क्या किया? जो लोग उस पर कीले ठोक रहे थे, जो लोग उसे मार रहे थे, क्राइस्ट के मन में उन सभी के लिए प्रेम था। और क्या प्रेम? अनकंडीशनल लव था उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में क्राइस्ट के प्रति घृणा थी। और उस अनकंडीशनल लव के कारण क्राइस्ट ने क्या किया? उन सभी को क्षमा कर दिया, और क्षमा करके भगवान से कहा कि गॉड फादर तुम भी इन लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब हमारा गुण माना प्रेम जब इतना पॉजिटिव होता है तो वह एक शक्ति के रूप में बदल जाता है, ताकि वह मौत को भी फेस करने की शक्ति उसे मिल जाती है। तो क्राइस्ट ने क्या किया? सिर्फ बातें कही सुनी नहीं, क्राइस्ट ने इन बातों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, अपने जीवन में धारण करके दिखाया कि जब हमारे गुण वह इतनी पॉजिटिविटी की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब हमारे मन में शक्तियों का, और कितने किस शक्ति का, इतनी शक्ति का कि कोई मौत को भी फेस करे और फिर भी पूरी तरह से रहमदिल क्षमा भाव से परिपूर्ण रहे। तो हम यह देखते हैं कि हमारे मन में भी हमें गुणों को विकसित करना है, गुणों का संचार करना है, और पॉजिटिविटी से करना है, ताकि वो ही गुण शक्तियों के रूप में हमारी ढाल बन जाए, हमारा कवच बन जाए, और हमें प्रॉब्लम से, हमें इतने सारे दुखों से हमें शील्ड करें, हमारी रक्षा करें।
आज हमने 8 शक्तियों में से एक शक्ति को जाना, जो है सहन शक्ति। जिस तरह आम का झाड़ भरा पूरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, इसलिए झुका हुआ होता है, इसका अर्थ है कि आम के पेड़ में आपको देने के लिए शक्ति है, इसलिए वो झुका है और उसमें सहन शक्ति है। तभी हम उस पे पत्थर मारे, चाहे उसको कितना ही तंग करे, वह आपको सदैव फल देता रहेगा। तो आज से हम सभी को कहना है, प्रॉब्लम्स को बाय, सहन शक्ति को हाय। अगर आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखकर भेजिए, हमें उनका उत्तर देने में आनंद मिलेगा। हमें आज जो जानकारी सिस्टर तृप्ति ने दी उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।
हम गुणों और शक्तियों को पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी इन देवी देवताओं जैसा शक्ति संपन्न और सुंदर होता। हम समझते हैं हमारा जीवन भी उन जैसा होना चाहिए, परंतु उन जैसा बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की बजाय मात्र उनकी महिमा गाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु राजयोग के माध्यम से हमारी खोई हुई सारी शक्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारी उन्नति के पीछे मुख्य हमारी अष्ट शक्तियां ही आधार हैं। सहन शक्ति, परिस्थितियां मनुष्य से उसकी सारी खुशी छीन लेती हैं तथा उसके जीवन में गम का अंधकार भर देती हैं। परंतु अपनी सहन शक्ति के बल से मानव परिस्थितियों को खेल बना देता है और दुख को भी सुख में बदल देता है।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबनी संतान हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम,
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचान है।
सत्यम शिवम,
बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता,
मन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है,
अनादि है,
शिव अनंत है,
अनंत है,
जीवन मधुबन
मधुबन शिव बसंत है।